सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो देशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है कि हम अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में जगह देनी होगी, और इतना ही नहीं उन श्रेष्ठ विचारों के अनुरूप अपने आचरण में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जब कोई चीज़ हमें मालूम हो और उसको हम प्रयोग में न लाएं तो वो चीज़ हमें लाभ नहीं दे पाती। हमें मालूम हो कि मिठाई बहुत अच्छी है लेकिन हम उसके मीठेपन का स्वाद न लें तो बताइएगा वो मिठाई अच्छी होती हुई भी हमें कोई लाभ दे पाएगी? और यदि वास्तव में हमें उसके मीठेपन का ज्ञान है और इसके बावजूद भी हम उसका सेवन न करें तो हमारे उस ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा? एक छोटे से बच्चे के हाथ में अगर चॉकलेट हो और उसे ये मालूम हो कि ये बहुत मीठी चीज है, उसकी माँ उसको सैकड़ों दफे मना करे कि मंदिर में बैठे हो खाना मत, तो वो मुस्कुरा देता है कि तुम पूजा में तो लगो फिर उसके बाद हम देखेंगे। तुम पूजा भर करना शुरू करो, तुम्हारा ध्यान उस तरफ गया नहीं और हमने धीरे से कब खाई हम रख ही नहीं सकते, हमको मालूम पड़ गया इतनी बढ़िया सी चीज खाने की और हम उसको ना खाएं, ऐसा हो सकता है? उतना छोटा सा बेटा भी जिस अच्छी वस्तु के बारे में जान लेता है तो उसके सेवन करने से अपने को रोक नहीं पाता है। और हम सब लोग इतने श्रेष्ठ विचारों को जानने वाले भी उन श्रेष्ठ विचारों को अगर अपने जीवन में ना लाएं तो इसका मतलब है कि हमारी कहीं ना कहीं कोई भूल तो है, हमारी कहीं ना कहीं कोई चूक तो है। अब हम इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि जो चीजें हमें मालूम पड़ी हैं उनको हम प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रयोग में तभी आती हैं जब वे बहुत अधिक हमारे भीतर अपना गहरा संस्कार डाल लेती हैं। और गहरा संस्कार तभी पड़ता है जब हम उन चीजों का सतत अभ्यास करते हैं। श्रेष्ठ विचारों के सतत अभ्यास की प्रक्रिया का नाम ही अनुप्रेक्षण है, वस्तु स्वरूप का निरंतर चिंतन करने का नाम ही अनुप्रेक्षण है, संसार और शरीर और भोगों की वास्तविकता का निरंतर विचार करते हुए संसार में रहना एक ना एक दिन हमें संसार से पार करने में सहायक हो जाएगा। जिस चीज का हम वास्तविक स्वरूप जानते हैं फिर हम उस चीज में अपने आप ही राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। हमारी अज्ञानता है कि जो हमें वस्तुओं में राग द्वेष उत्पन्न कराती है, और अगर हमारे भीतर ज्ञान है, हमें वस्तु का स्वरूप मालूम है, तो हम फिर गाफिल नहीं हो सकते। तो अनुप्रेक्षा हमारे जीवन को मोह से बचाती है, हमें राग द्वेष से बचाती है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन उनके बीच हमें कैसे जीना है ये सिखाती है। सुख में हर्षित होकर के दुनिया जीती है और दुख में विषाद करती है, दुखी हो जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है, ऐसा कोई प्रयोग हो सकता है कि मुझे कितना भी सुख आए मैं एक्साइट नहीं होऊंगा, मुझे कितनी भी पीड़ा हो लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है यदि हमारे पास विचार की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। हम फौरन अपने को संभाल सकते हैं। एक सेठ के यहां पर युवक नौकरी करता था। सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था, हजारों लाखों रुपए का टर्नओवर था। रोज आते थे, रोज चले जाते थे। वो बहुत चकित था कि इतनी अपार संपदा के बीच भी, और कभी हमने सेठ जी को बहुत एक्साइट होते या बहुत डिप्रेस होते नहीं देखा। बहुत अधिक हर्ष विभोर होकर के और अपने आप को भूल जाएं ऐसा भी नहीं देखा, और बहुत दुखी हो जाएं ऐसा भी नहीं देखा। एक बार ऐसा हुआ कि इतना मुनाफा हुआ कि उसने खुद अपनी जिंदगी में सेठ को इतना मुनाफा होते नहीं देखा था। तो उसने सोचा कि अब तो सेठ जरूर खुशी होंगे, और आज तो हो ही नहीं सकता संभव कि वो चुप बैठे रहे, और मैं सबसे जाके पहले जाकर के ये मैसेज उनको दूंगा कि आज इतना अधिक आपके लिए मुनाफा हुआ है। और वो जाता है, और सेठ जी गद्दी पर बैठे हैं, उनको वो सारी बात कहता है कि इतना मुनाफा हुआ। तो सेठ जी अपने काम में लगे हैं तो लगे हैं, जैसे सुना ही नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ इसको। उसने फिर से कहा कि सेठ जी इतना मुनाफा हुआ। उसने कहा, सेठ जी ने कहा, ठीक है तो अपना काम देखो और मुझे भी अपना काम करने दो, ये तो लगा ही हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, सेठ जी सुख में सुखी नहीं होते, पर कभी इन पे जब दुख आ गिरेगा तब देख लेंगे, तब तो ये दुखी होंगे। भैया, अपन के जीवन में मजा ये है कि जिस व्यक्ति ने सुख में हर्ष नहीं किया है उसे कोई भी दुख आ जाए विषाद में नहीं गिरा सकता। जिस व्यक्ति ने कभी सम्मान की आकांक्षा नहीं करी उसका कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपमान कर सके। ये ध्यान रखना, हमारा अपमान कोई करता है इसका मतलब है कि हमने सम्मान की आकांक्षा करी थी। हमें कोई दुखी कर सकता है क्योंकि हमने यहां इस संसार में सुख पाने की चेष्टा करी थी, नहीं तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता इस संसार में। बस इतना सा गणित है, ये जिस दिन समझ में आ जावे, जिस दिन जीवन में आ जाए। समझ में तो कई लोगों के आ जाता है ये गणित, लेकिन जीवन में जिस दिन आ जाए उस दिन देखिएगा कैसे जीवन हमारा अच्छा नहीं बनता है, कैसे हम अपना कल्याण नहीं करते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतना अधिक घाटा हुआ कि शायद जीवन में इतना घाटा कभी नहीं हुआ था। अब ये खबर वो स्वयं नहीं ले जाना चाहता सेठ के पास। एक पैसा भी उसका नहीं है सेठ की संपत्ति में, लेकिन वो सेठ के साथ इतना जुड़ गया है वो नौकर कि उनके अहित में वो स्वयं दुखी होता है। तो सोचता है मैं क्यों खबर दूं इतने बड़े नुकसान की, कहीं ना कहीं से सेठ को मालूम पड़ जाएगा। दूसरों को उकसाता है कि बताओ सेठ को, तो दूसरे लोग जाकर के सेठ को बताते हैं कितना नुकसान हुआ। फिर भी सेठ जी ठीक वैसे ही बैठे रहते हैं जैसे उस दिन उस सुख की बात कहने पर बैठे थे। बहुत दंग रह जाता है वो कि इतने घाटे के बावजूद भी वो चुप कैसे बैठे हुए हैं, और अंत में पूछ ही लेता है कि सेठ जी मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि कल जब आपको एक दिन बहुत मुनाफा हुआ था तब भी आप चुप बैठे थे, और आज इतना घाटा हुआ तब भी आपको कोई दुख नहीं है, मुझे इसका राज बताइए। तो सेठ जी ने मालूम क्या कहा कि देख भाई, तू मेरी संपत्ति को अपनी मानता है क्या? अरे नहीं सेठ जी, कैसे मान सकता हूं मैं। तो इतना नफा और नुकसान हुआ, तेरे को ज्यादा फर्क पड़ा क्या? सेठ जी आपसे मुझे स्नेह है इसलिए थोड़ा सा तो लगा। अच्छा और कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको कि मुझसे कोई स्नेह ना हो, तो तू कहते उसको क्या फर्क पड़ने वाला, आपको हो नफा नुकसान इससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला, आपके जो स्नेही है उनको थोड़ा फर्क पड़ेगा या आपको फर्क पड़ना चाहिए। सेठ जी ने कहा मुझे तेरे से कुछ नहीं कहना, जैसे तू इस संपत्ति को अपनी नहीं मानता मेरी मानता है, ऐसे ही मैं इस संपत्ति को अपनी नहीं मानता, ये संपत्ति तो आती जाती रहती है, आज मेरे हाथ में है कल किसी और के हाथ में होगी, ये किसी के हाथ में एकदम टिक के नहीं रहती है, आती जाती रहती है। तब इसके आने पर हर्षित होना और चले जाने पर विषाद करना, इसकी आवश्यकता क्या है? इतना छोटा सा हमारे जीवन में ये ज्ञान अगर हो जाए, इतना थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, तो क्या हम सुख दुख के अवसर आने पर भी उनमें समता नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। सारा संसार सुख दुख में हर्ष विषाद पर खड़ा हुआ है। अगर सारा संसार हमने बनाया है तो इसी हर्ष विषाद और राग द्वेष और इष्ट अनिष्ट की कल्पना से ही बनाया है, और कोई संसार नाम की चीज नहीं है। लोक लोक तो है जो छह द्रव्यों से मिलकर बना है, शाश्वत है, लेकिन संसार अपना अपना हम खुद बनाते हैं, जिसमें हम अपना आवागमन अपने राग द्वेष के परिणाम से स्वयं करते हैं। कोई ने हमारे लिए संसार बनाया हो या कोई आकर के हमारा संसार मिटा देगा, ऐसा संभव नहीं है। अपना संसार राग द्वेष का संसार हम खुद बनाते हैं, और हम चाहें तो उस राग द्वेष को मिटा करके अपने संसार से पार हो सकते हैं, इतना सीधा सा हिसाब। लेकिन वो राग द्वेष मिटे कैसे? वो तो 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे अपना और पराया, अपना और पराया, मेरा और तेरा, इसके अलावा कुछ मेरे जीवन में होते ही नहीं। कल मैं बैठे बैठे सोच रहा था वहां पर छत में कि ये पशु हैं, इनमें और हम में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि सुबह आंख खुलती है तो बेदौड़ में शामिल हो जाते हैं, दिन भर एक ही काम है, इधर कुछ खाने मिल जाए, उधर कुछ खाने मिल जाए। पशु जगत में जरा सा गौर से देखना, सुबह से शाम तक एक ही विशेष रूप से संज्ञा है, भोजन की। अगर रात नहीं होती तो वे शायद अंधेरे में उनको दिखता, तो ऐसे भी पशु हैं जिनको अंधेरे में दिखता है, तो वे अंधेरे में भी अपने आहार की खोज में ही रहते हैं और बाकी उनको नहीं सूझता। सोना, सुबह जाग करके आहार दिन भर खोजना, उस आहार को लेकर के छीना छपटी करना, झगड़ा करना और जिंदगी पूरी कर देना। अगर हम भी ऐसा ही कर रहे हैं तो हम में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, जरा विचार करना है इस चीज का। हम उनसे ऊपर तब उठ सकते हैं जबकि हम इन कषाय भावों से जो कि इस संसार में, या कि चार संज्ञाएं जो कि इस संसार में हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये चार संज्ञाओं से हम ग्रसित हैं, इन चार संज्ञाओं से ऊपर उठें, तभी संभव है कि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते। बाकी तो सब बातें बातें हैं, कितने ही कर लीजिए आप। अगर हम अपनी चार कषायों को मंद नहीं कर पाए और इन संज्ञाओं से नहीं ऊपर उठ पाए, तो शायद हमारे अपने जीवन की सार्थकता हमने स्वयं ही नहीं समझी है। इसलिए जरूरी है कि हम इन संज्ञाओं को और इन कषायों को धीरे धीरे कम करने के लिए कोई ना कोई प्रयास करें, और वो सबसे अच्छा प्रयास है कि हम निरंतर इस बात का एहसास करते रहें, इस बात का अनुभव करते रहें कि संसार की वास्तविकता क्या है, और वो कौन बताएगा? वो अनुप्रेक्षा बताएगी। कल हमने समझा था कि इस संसार में जो चीजें मेरे कांटेक्ट में आती हैं वे सारी की सारी फ्राइबल हैं, वो सारी की सारी नष्ट हो जाने वाली है। मेरे देखते देखते कुछ चीजें नष्ट होती हैं, मैं जब नहीं था तब भी चीजें नष्ट होती थी, और मैं जब नहीं रहूंगा तब भी वे नष्ट होती, उनका स्वभाव है, वे उत्पन्न होती मालूम पड़ती हैं लेकिन वे एक दिन नष्ट भी हो जाती हैं। इसके पीछे क्या चीज है जो कि शाश्वत रहती है? सारा संसार क्षणभंगुर है, सारे संबंध क्षणभंगुर हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ है जो कि शाश्वत है, मुझे उसको देख लेना चाहिए। क्षणभंगुर है इसलिए मुझे उनसे उदास हो जाना है, ऐसा नहीं है, बल्कि उस क्षण भंगुर को जो मैं स्थाई बनाने का मिथ्या प्रयास करता हूं वो ठीक नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ जो शाश्वत द्रव्य है मुझे उसे देख लेना चाहिए। मेरा शरीर तो क्षण भंगुर है जो कि निरंतर शीर्यन्ते इति शरीराणि, जो निरंतर शीर्ण हो रहा है, निरंतर जीर्ण हो रहा है, वो शरीर है। उस शरीर के भीतर जो मैं बैठा हूं वो शाश्वत है, ऐसा विचार निरंतर बना रहे, बस इतना ही। हमें अनुत्तर उपेक्षा सिर्फ ये नहीं सिखाती कि हम सिर्फ संसार की क्षणभंगुरता को देख करके उससे और उदास हो जाएं, गमगीन हो जाएं कि अरे सब नष्ट हो जाने वाला है। नहीं, ऐसी उदासी और गमगीन और दुखी होने के लिए क्षणभंगुरता का बोध नहीं है, बल्कि हंसी आनी चाहिए कि अरे मैं कितना प्रयत्न करता हूं सुबह से शाम तक इन चीजों को शाश्वत बनाने का, और कितना बेखबर रहता हूं जो शाश्वत है उसके प्रति, बस इतना ध्यान आ जाए तो यह अनुप्रेक्षा हमारी सार्थक होगी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ें। सुर असुर खगादिक जेते मृग ज्यो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई। सबको मालूम, सब दोहरा रहे हैं, हम सब दोहरा रहे हैं, धर्म भी दोहरा रहे हैं, संसार भी दोहरा रहे हैं, पर उस दोहराने की प्रक्रिया में संसार से अनाशक्त नहीं हो पाते और धर्म में हमारी आशक्ति बढ़ नहीं पाती, जबकि दोहराने की प्रक्रिया दोनों चीजें कर सकती है। जो चीज अपने जीवन में अहितकारी है उसको दोहराने पर, बार बार दोहराने पर समझ में आने लगता है कि अहितकारी है। सो संसार के भोगों को बार बार भोगने के बाद भी उनसे होने वाले अहित को हमें जान लेना चाहिए था, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते, और जो चीज हितकारी है धर्म उसको बार बार दोहरा करके भी हम उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं, बस इतना ही है। सिर्फ शरीर और वाणी से खूब धर्म कर रहे हैं, लेकिन मन की कलुषता ज्यों की त्यों बरकरार है, उसमें जरा भी धक्का नहीं पहुंचता है। मैं जब जब भी इस तरह देखता हूं मुझे यही लगता है कि नहीं, अभी हम लोगों के जीवन में धर्म आया नहीं है। धर्मात्मा कहलाना अलग बात है और धर्मात्मा होना बहुत अलग बात है। हम रोज रोज अनुप्रेक्षाएं करते हैं, लेकिन रोज रोज पढ़ने के बाद भी क्यों हमारे जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं आता है। हम जानते हैं कि सुर असुर खगादि व्याख्या कर लेंगे हम, मरते न बचावे कोई, लेकिन हम तो सोचते थे कि पद प्रतिष्ठा पालेंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी, धन संपत्ति वैभव पालेंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी, हमारे जितने ज्यादा संबंधी होंगे वे हमारी रक्षा करेंगे, हम तो इसी भ्रम में जी रहे हैं। जबकि ये लाइन हम रोज पढ़ते हैं कि मरण से मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं कितने ही अपने चारों तरफ सुरक्षा के साधन इकट्ठे कर लूं, यहां पर मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते ना बचा। मुझे ये मालूम पड़ गया है कि एक दिन मुझे मरना पड़ेगा, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि एक दिन मुझे मरना पड़ेगा तो मैंने इंतजाम करना शुरू कर दिया। कौन से कि मरो नहीं, मैंने सोचा कि मैं मंत्र तंत्र सीख लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मेरे पास पद प्रतिष्ठा होगी, अगर मैं बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होऊंगा तो मुझे बहुत सारे लोग मेरी सुरक्षा कर लेंगे, मेरे अपने जितने ज्यादा संबंधी होंगे, मेरे पास जितना धन पैसा होगा, हम सब लोग धन पैसा में अपने प्राण सुरक्षित मानने वाले लोग हैं, ये ध्यान रखना। इसका अनुभव स्वयं अपने मन से करना कि हम लोग धन पैसे में सुरक्षा मानने वाले, पद और प्रतिष्ठा में अपनी सुरक्षा मानने वाले, अपने संबंधों में अपनी सुरक्षा मानने वाले लोग हैं, भले ही कोई कुछ भी कहे। बहुत गौर से देखना, पुराने जमाने में बच्चों के लिए कहानियां लिखी जाती थी, वो हमें हंसी की कहानियां लगती थी, अरे क्या ऐसी हल्की सी बात लिखी, ऐसी नहीं लिखी रहती थी कि एक राजा था और उसके सामने पेड़ पर एक तोता रहता था, फिर बाद में किसी से झगड़ा हो गया
तो अब कैसे राजा को मारा जाए, तो किसी ने बता दिया कि राजा की जान तो तोते में है। याद आया, ऐसे ही तो होता था, राजा के प्राण तोते में है, तुम तोता पकड़ लो और तोते की गर्दन थोड़ी दबाते हैं तो राजा की दबने लगती है, तोते की टांग पकड़ते हैं तो राजा की टांग में तकलीफ होने लगती है, ये क्या है ये,
ये कहानी किस्सा नहीं है, ये हमारे अपने जीवन की आप बीती है कि हमारे प्राण किस किस में धरे हैं। किसी के तोता में धरे हैं तो किसी के तिजोरी में धरे हैं, तन्नक अगर हिला दो तो बेहिल जाओगे।
हमारे प्राण भी ऐसे ही रखे हुए हैं, हमारी सारी प्राणों की सुरक्षा उस तिजोरी में है। अगर उसका ढक्कन खोल दो, हिला दो, तो ऐसा लगता है जैसे यहां किसी ने ढक्कन खोल दिया हो, हिला दिया हो, पूरा जीवन। इसमें और उसमें अंतर क्या है? जरा विचार करने की चीज है, ये हंसने की चीज नहीं है। एंटरटेन नहीं कर रहे हैं अपन, अपन वस्तु स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। रोना आना चाहिए था इस चीज को लेकर के, माथा झुक जाना चाहिए था शर्म से कि मैं वही हूं जो कि अपने प्राणों को तिजोरी में सुरक्षित रखे बैठा हूं, मैं वही हूं जो कि पद प्रतिष्ठा में अपनी सुरक्षा खोजता हूं, मैं वही हूं जो कि थोड़ी सी विद्या हासिल करने, मंत्र तंत्र हासिल करने में और अपने प्राण सुरक्षित मानता हूं, मुझमें और अज्ञानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा विचार आना चाहिए। उसी क्षण जिस क्षण की तिजोरी का ताला लगा करके 10 दफे हिला रहे हैं, उस समय याद आना चाहिए कि मेरी सुरक्षा कर पाएगा ये धन, ये मेरी सुरक्षा कर रहा है या मैं इसकी सुरक्षा में लगा हूं, मैं इसका मालिक हूं या मेरा मालिक बन के बैठा हुआ है, मैं इसका नौकर हूं कि सुबह से शाम तक रखवाली करता रहता हूं। मानता जरूर हूं कि मैं इस पूरी संपत्ति का मालिक हूं, कोई संपत्ति का मालिक नहीं है, संपत्ति के गुलाम हैं सब। अगर गौर से देखा जाए, संपत्ति का मालिक वो है जो संपत्ति को लुटा देता है, वो मालिक है, और जो संपत्ति को छाती से लगाए रखे रहता और चौकीदारी करता उसकी सुबह से शाम तक, वो उसका मालिक हो सकता है कि उसका नौकर चाकर ही हो सकता है, गुलाम हो सकता है? बताइएगा कौन हो सकता है?
विचार करिएगा खुद। जो अपने इंद्रियों का सदुपयोग करता है वो इंद्रियों का मालिक है, और जो इंद्रियों के विषयों के पोषण में लगा है वो तो इंद्रियों का गुलाम ही कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? ऐसा विचार करें हम कि कहां हम अपनी सुरक्षा खोज रहे हैं, इस संसार की वस्तुओं में जो कि नष्ट हो जाने वाली है। हम सोचते हैं कि हमारा मरण होगा, हम नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इंतजाम कर लो, और हमने इंतजाम भी कौन से किए हैं? यही इंतजाम किए हैं धन संपदा में, हमने सुरक्षा खोजी है, अपने संबंधों में सुरक्षा खोजी। भैया कोई कितना भी किसी का प्रियजन क्यों ना हो, लेकिन मुझे बताइएगा, आपका अपना बेटा भी आखिरी समय पानी से भरा गिलास दे सकता है, एक ठो टैबलेट दे सकता है, लेकिन सांसें दे सकता है? लिमिटेशंस हैं, सबकी सीमाएं हैं, लेकिन हम कितनी अपेक्षा रखते हैं कि ये हमें सुरक्षा देगा? ये हमारा भ्रम ही तो है, ये हमारा मोह ही तो है। क्यों नहीं टूटता है? जानते हैं हम सब, इसके बावजूद भी ये टूटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब उसी में शामिल हैं, अपन विचार कर रहे हैं इस चीज का। आप ऐसा मत कहिएगा, सोचिएगा कि मैं आपको इस तरह से और कोई कमेंट कर रहा हूं या आपकी अज्ञानता को उजागर कर रहा हूं। नहीं, हम सब लोग बैठ करके अपनी अज्ञानता के बारे में विचार कर रहे हैं कि देखो तो हमारी अज्ञानता, और बने फिरते हम ज्ञानी। अभी कोई अपन से कहे कि भैया ऐसो नहीं ऐसो करो, तो अपन फौरन कहेंगे कत्तो मैया जाना था, हम सुई जाना था, ऐसा कह देंगे। ऐसे ज्ञानी बने फिरते हैं, लेकिन अपने अज्ञान को अगर झांक करके अपने भीतर देखें तो कितने बड़े अंधेरे में और कितने बड़े अज्ञान में हम यहां पर अपने आप अपने हाथ से कल्याण कर रहे हैं अपना। हमें यहां पर संसार में शरण नहीं है, ये बात हमें स्वयं देखनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां हम शरण खोजते हैं, जहां जहां अपनी सुरक्षा के लिए हम इंतजाम करते हैं, वो सारी चीजें स्वयं नष्ट होने वाली हैं। वे क्या हमें हमारा हमारी रक्षा करेंगी? उनकी स्वयं की रक्षा वे नहीं कर पा रही हैं। हमारा बेटा हमारी क्या रक्षा करेगा? क्या वो हमें सांसें दे देगा? सिकंदर आखिरी समय सारे वैद्य हकीम और डॉक्टर्स से सिर्फ एक ही गुजारिश करता था, एक ही निवेदन करता था कि आधे घंटे के लिए सांसें दे दो, मेरी मां समुद्र पार करके मुझसे मिलने आ रही है, आखिरी समय मैं अपनी मां का मुंह देख लूं, बस इतनी इतनी देर के लिए सांसें दे दो, मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। क्या दे सके थे? कोई नहीं दे पाया था। तब बताइएगा कि हम इस संसार में किस किस चीज में शरण खोज रहे हैं? क्या हम अब यहां संसार में कोई भी शरण नहीं है? ऐसा अगर भाव आ जावे कि हां वास्तव में इस संसार की वस्तुओं में, इस संसार के संयोगों में, इस संसार की पर्यायों में कोई शरण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस संसार में एकमात्र शरण अगर कोई है तो धम्मम शरणम पवज्जामि। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और धर्म, ये चार ही शरण हैं। लेकिन ये शरण तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि दुनिया भर में शरण मानते रहेंगे। ध्यान रखना, भले ही आप अरहंते शरणम पवज्जामि 10 दफे बोल लो, लेकिन अगर अभी हमारे मन से ये भ्रम नहीं टूटा है कि संसार में शरण नहीं है, तब तक ये शरण, जब तक ये नहीं लगे कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, संसार में जब हम थक करके भगवान के दरवाजे पे आते हैं तब जाकर के हमें मालूम पड़ता है कि हाँ वास्तव में शरण ये है। और जब तक हमें संसार में शरण मालूम पड़ती है तब तक तो हम भगवान से भी यही कहने आते हैं कि वो सब बनाए रखियो, एक ही लाने हम आपके पास आए हैं और हमें कछु नहीं जाने आपसे। जिसमें मैं शरण मानता हूं भगवान वो बनी रहे, इसका आशीर्वाद दे आप हमारे लिए शरण हो, इतना ही लाने कि बे सब शरण हमारी बनी रहे। बताओ अच्छा, इसके अलावा और कुछ करते हैं भगवान के? भगवान को वास्तव में अपन शरण मानते हैं क्या? नहीं, हमारे धन पैसा वैभव में कमी न आ जावे, बस इतना ही करियो भगवान। कैसे? उन्हीं में हमने शरण मानी है, यही हमारे शरण भूत है। आप तो हमारे उतना ही काम कटा दिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन ये मालूम पड़ जाएगा उस दिन हमारी पूजा का ढंग बदल जाएगा, तब हम कह पाएंगे कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। तस्मात, विथ लॉजिक, इसलिए, तस्मात कारणात,
रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, अब कहता हूं आपसे कि मेरी रक्षा करो। अभी तक तो मैं यही सोचता था कि दुनिया भर की चीजें मेरी
रक्षा करेंगी, अब मुझे मालूम पड़ गया है कि इस संसार में कोई शरण नहीं है, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। अब जब मैं असहाय, मेरा कोई आलंबन नहीं, जिस दिन ये लगने लगे तब एकमात्र आप ही हो, अब आप तो कृपा करो।
अरे भाई, जिसका संसार में कोई हो गए उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं उसकी चिंता की किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा संसार में कोई नहीं है, अन्यथा शरणम
नास्ति, अब तो आप चिंता करो। ऐसा हम उस दिन पूरे मन से कह पाएंगे,
अभी तो हम आधे अधूरे मन से कह पाते हैं। ऐसी शरण अगर हमें समझ में आ जाए और संसार में अशरण समझ में आ जाए, तब देखिएगा धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा
कि एकदम हमने सुना और शुरू हो गया आज से, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं अपन, और अनुभव में ला करके देखें कि हाँ वास्तविकता तो यही है। मेरा बेटा, फिर मैं उससे इतनी अपेक्षाएं क्यों रखूं जब वो मुझे सांस नहीं दे सकता है, जब ये धन संपत्ति मुझे मेरे प्राणों को नहीं बचा सकती है, तो मैं इसके बचाने में क्यों लगा रहा हूं? बस इतना विचार मुझे करना चाहिए। यहां पर खूब कंसंट्रेशन से नहीं सुनते ना लोग, मुझे ऐसा लगता है,
प्लीज क्षमा करिएगा। यहां पर बहुत कंसंट्रेशन से नहीं सुनते, मैं कितने कंसंट्रेशन से बोलता हूं और मैं एक लाइन में बोलता हूं तो मुझे अपनी बात से भूल भूल जाती है, पता नहीं क्या। आप थोड़ा संभालिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन बहुत चाहिए जीवन में अपन लोग।
और सब चीजों में बहुत कंसंट्रेशन से काम करते हैं, दुकान में बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत ध्यान से काम करते हैं, घर के काम सब उससे करते हैं, लेकिन मंदिर में जो है पूजा भी ध्यान से नहीं करते और प्रवचन भी ध्यान से नहीं सुनते। एक बार अगर किसी ने वास्तव में सुन लिया तो फिर उसके लिए बार बार सुनने की आवश्यकता ना पड़े, सुनना तो वही सार्थक।
ये तो रोज का
रूटीन बन गया है, मेरा है कि मुझे कहना और आपका है कि आपको सुनना है। हाउ टू मैंने पास द टाइम, एक घंटे कैसे पास करना है, तो ये पास करने वाली मूंगफली नहीं है भैया, कृपा करके ये ध्यान रखिए,
टाइम पास वाली मूंगफली नहीं है ये जीवन को परिवर्तित करने का गणित है, ये जीवन को परिवर्तित करने के क्षण है।
अगर इन क्षणों में भी हम जीवन का लाभ परिवर्तन का नहीं ले सके तो ऐसे हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे जो सुनाएंगे, और हमसे पहले भी बहुत लोग आए थे सुनाने वाले, वो भी सुना के गए होंगे, हम जहां के तहां बैठे हुए, क्योंकि हमने ठीक से सुना ही नहीं, उनकी गलती नहीं है सुनाने वाले की, हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं बनता। और अपन बात कर रहे थे इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, हम कितनी भी अपेक्षा करें कि ये मुझे शरण देगा, ये मुझे मेरी रक्षा करेगा, मेरा पार कर देगा बेड़ा, कोई पार नहीं करता है, कोई करने वाला है, तो मेरा अपना आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, और उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने वाले हैं वे ही मेरे लिए शरण हो सकते हैं। या तो मैं उन पंच परमेश्वरी और वीतराग धर्म की शरण ले लूं, या फिर उनके माध्यम से मैं अपने स्वरूप को जान करके अपने आत्मा की ही शरण ले लूं। बाकी जितनी पर्याय हैं सब संयोगी हैं और यहीं पर नष्ट हो जाने वाली हैं, वे मुझे शरण नहीं दे सकती हैं। इतना अगर अपने भीतर भाव आ जावे तो कोई वजह नहीं है कि ये संस्कार हमारे मोह को न तोड़ पाए, हमारा मोह तुरंत टूट जाएगा। फिर किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होगी, फिर किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी कि ये व्यक्ति मेरे लिए शरण देगा। नहीं, स्वावलंबन की प्रक्रिया सिखाती है अशरण भावना। अशरण भावना के मायने ये नहीं है कि सारे संबंधों को तोड़ लो, काय से जी तो हमारे कोनो काम है नहीं आने। महाराज तो खुद ही कह रहे थे आज कि कोऊ कछु कोऊ को नहीं आ, कोई काम है नहीं आने वाला है, तो सब संबंध तोड़ के बैठ जाओ। ये तो द्वेष द्वेष हो गया। संबंधों को जान के और ठीक से जीना शुरू कर दो, ये कहलाएगा आचरण भावना का सही स्वावलंबन अपने जीवन में आ जाए।
नहीं तो हम परावलंबी ही बनते चले जा रहे हैं। पूरा जीवन हमारा दूसरे पर पराश्रित जीवन है। आनंद पराश्रित जीवन में नहीं है। आनंद तो अपने आप में स्वस्थ होकर के जीने में है, अपने में शरण मान करके जीने में है। ऐसा विचार हमारे भीतर समय समय पर आ जावे।
जब जब भी हम चीजों में अपनी रक्षा खोजें, तब तब हमारे ध्यान में आ जाए कि नहीं, चीजें मेरी रक्षा क्या कर सकती, मैं तो सिर्फ इनका उपयोग करता हूं, बाकी तो मुझे इन चीजों के माध्यम से अपने भीतर ही सुख खोज लेना है, शरण खोज लेनी है। इतना यदि हमारे मन में ध्यान आ जाए, रामचंद्र जी
रावण हरण करके ले गया, रोक पाए?
बताइए, शरण दे पाए? कहते तो थे कि मैं सीता को मैंने शरण दी है। जब रावण हरण करके ले गया तो वो कुछ कर पाए थे? कुछ भी नहीं कर पाए। जब लक्ष्मण का मरण हो गया तब 6 महीने तक उसको कंधे पर उठाए घूमते रहे, क्या सांस दे सके? इतना प्यार था भाई का। अगर भाई का प्यार देखना हो तो नारायण और बलदेव का प्यार देखो, भाई भाई के बीच अगर प्रेम है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो सांसें दे पाए थे? एक भ्रम में जीते रहे 6 महीने तक कि मेरा भाई जीवित है। ये मोह, और जिस दिन मोह टूटा उस दिन खुद अपने ऊपर हंसे थे। जब तक मोह था तो सीता जी के लिए वहां तक युद्ध लड़ करके वापस ले आए और अग्नि परीक्षा के लिए प्रेरित कर दिया। और जब सीता जी अग्नि परीक्षा के बाद आरिका बनने लगी, तब भी मोह के वशीभूत होके कह रहे हैं कि चलो उसी संसार में। तब सीता जी को कहना पड़ा था कि जहां आपको भी शरण नहीं है वहां मुझे कहां शरण मिलेगी। मैं उस संसार में जो कि अशरण भूत है अब फिर से नहीं लौटना चाहती। मैंने तो आपके आपकी शरण में आई थी, सो आपने भी मुझे अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि की शरण में भेज दिया था। अब अगर उससे बाहर आ गई हूं तो मैं उस शरण को पाऊं जो कि वास्तविक शरण है। और तब जाकर के रामचंद्र जी को भी उनके चरणों में प्रणाम करना पड़ा था। करना क्या पड़ा था? उन्होंने तो श्रद्धा से किया था, वंदना करना पड़ा। क्यों? आपने वास्तविक शरण पा ली, और एक दिन मैं भी उसी शरण को प्राप्त करूंगा, उसी रत्नत्रय को प्राप्त करके जो कि मेरे लिए शरण भूत है, मैं भी अपना कल्याण करूंगा। भैया इतनी सी बात अपने समझ में आ जाए कि संसार में शरण नहीं है। मैं भले ही कितने भी खोजूं सुरक्षा इस संसार में, चीजों में सुरक्षा खोजूं, संबंधों में सुरक्षा खोजूं, ज्ञान में सुरक्षा खोजूं, कहीं कोई शरण नहीं है। मेरे लिए शरण है तो मेरे अपने स्वभाव में मैं जितना अधिक लीन रहूं, या कि मैं पंच परमेश्वरी के चिंतन में लीन रहूं, जब जब भी समय मिले तब तब वास्तविक शरण जो है उसको स्मरण कर लेना, इतना ही पर्याप्त है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो इतनी बात आखिरी में लेकर के जाना भैया कि जब भी समय मिले, 1 मिनट का समय मिले, तो फौरन पंच परमेश्वरी को याद कर लेना। रोटी बनाते बनाते 2 मिनट का वक्त मिले तो फौरन सब छोड़ करके नमो अरहंतानम, मेरे लिए शरण तो वही है, बाकी तो ये सब मैं अपना संसार बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। अगर इस संसार में मैं सुरक्षा मानता हूं तो ये संसार मुझे सुरक्षा दे नहीं सकेगा, इसकी अपनी सामर्थ्य नहीं है। किसी से शिकायत नहीं है कि क्यों नहीं मुझे शरण दे रहा, वो शरण दे नहीं सकता, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो मुझे शरण दे नहीं सकता है। शरण तो मुझे अपने भीतर ही पानी पड़ेगी और मुझे दूसरे से कुछ अपेक्षा नहीं है। दूसरा मेरे से कुछ चाहे तो मैं तैयार हूं, मैं अपना जीवन
लंबी होके जीऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे को कुछ मदद ही नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं समझ लेना। मैं तो स्वास्थ्य होके जीऊंगा, सारे काम अपने हाथ से करूंगा, लेकिन दूसरे के लिए मदद करने हमेशा तैयार रहूंगा। पर वो मदद करते समय मैं उसे ये बात बता दूंगा कि तुम भी स्वावलंबी बनो, मैं तुम्हारी मदद तभी तक कर रहा हूं जब तक कि तुम स्वावलंबी नहीं बनते हो। कोई भी पिता अपने बेटे का बचपन में हाथ पकड़ के ये नहीं चाहता कि जिंदगी भर ये मेरा हाथ पकड़ के ही चलता रहे, नहीं, बस तब तक पकड़े जब तक कि ये अपने पैरों से चलना नहीं सीखता। जिस दिन सीख लेता उस दिन अपन खुद कहते अब छोड़ो तुम, अब का भी पकड़े हो, चलो अपने अपने पांव पे चलो, नहीं कहते, बल्कि खुश होते हैं कि अब तो ये मेरी उंगली बिना पकड़े चलने लगा, अरे देखो कितना होशियार हो गया है, और अभी तो छोटा ही सा है फिर भी अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, कितने जल्दी चलने लगा है। उसके स्वावलंबन से खुशी होते हैं भैया। ऐसे ही जो है अपने जीवन में भी अगर स्वावलंबन आवे, ये पराश्रितता चाहे शरीर की हो चाहे अन्य संसार की संयोगी पर्यायों की हो, ये पराश्रितता छूट जावे, ऐसा उद्यम करना चाहिए। और अपने जीवन में जितनी स्वास्थ्यता आती चली जावे उतना उद्यम करना चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा न रख करके कि कोई हमारा भला कर देगा, कोई हमारा
प्राण कर देगा, कोई हमारी सुरक्षा कर देगा, मुझे स्वयं जो है धर्म की शरण ले लूंगा तो मैं अपने आप में सुरक्षित हो जाऊंगा। और अगर धर्म की शरण नहीं है तो संसार में कोई भी शरण नहीं है, तो संसार में शरण है भी और नहीं भी है। संसार की संयोगी पर्यायों में कोई शरण नहीं है, लेकिन संसार में अगर कोई शरण है तो एकमात्र पंच परमेष्ठी और धर्म ही मेरे लिए शरण है। इस तरह यदि हम निरंतर इस बात का विचार करते रहें तो हमारे जीवन में और हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब इन छोटी छोटी चीज़ों का विचार करके और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर के,
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञनाग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
पाया